दिन भर रविवार 30 अगस्त मैं हूं निखिल रंजन। बीजेपी का सामना करने के लिए बिहार की स्वाभिमान रैली में एक मंच पर नीतीश कुमार, सोनिया गांधी और लालू यादव।
तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट टू है, नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट टू है।
गुजरात में पटेल समुदाय का आंदोलन इतने कम समय में कैसे हो गया इतना बड़ा? अहमदाबाद से लौटे जुबैर अहमद की खास रिपोर्ट। साप्ताहिक कार्यक्रम फैला उजियारा में आज कहानी हिंदू धर्म को दर्शन से जोड़ने वाले आदि शंकराचार्य की। खबरें होंगी और भी, लेकिन सबसे पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बिहार में चुनावों से पहले आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की रैली में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली में नीतीश के साथ सोनिया गांधी और लालू यादव भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने जंगल राज से लेकर बिहार के पिछड़ेपन और विशेष पैकेज के मुद्दों पर मोदी पर वार किए। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में सिवाय शोबाजी के कुछ नहीं किया है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज चाहिए। मिस्र के विदेश मंत्री ने अल जजीरा के 3 पत्रकारों को सजा सुनाए जाने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही आलोचना को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि मिस्र में हजारों पत्रकार पूरी स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। मिस्र में ब्रिटेन के राजदूत जॉन कैसन को इस मामले में तल्ख टिप्पणी करने के लिए तलब किया गया है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में पत्रकार मोहम्मद फामी की वकील अमल क्लूनी ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्द फतह अल सीसी को भी ये एहसास है कि ये मामला मिस्र की छवि के लिए सही नहीं है।
He has said consistently about this case that he wished it had never happened, that it's been damaging to.
उन्होंने लगातार कहा है कि अच्छा होता कि ये मामला होता ही नहीं और ये मिस्र की छवि के लिए ठीक नहीं है, और वो इस मामले में दखल देना भी चाहते रहे हैं। ये व्यंग्यपूर्ण है कि मामला मिस्र की छवि खराब करने का ही था और अदालत के फैसले से अब मिस्र की छवि वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है। हमें उम्मीद है कि वो ये समझते हैं और इस मसले का हल निकालेंगे। ये थे मोहम्मद फामी की वकील अमल क्लूनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर नया अध्यादेश नहीं आएगा। हालांकि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन बिल से जुड़े 13 बिंदुओं को आज से लागू कर दिया गया है। जमीन अधिग्रहण अध्यादेश सोमवार यानी 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि इस मुद्दे पर सरकार का मन खुला है और किसानों में जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर जो भ्रम पैदा किया गया था उसे दूर करने के लिए कोशिश की जाएगी। सऊदी अरब के सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि एक तेल कंपनी के कर्मचारियों के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई और यह घटना सऊदी अरब के पूर्वी शहर खोबार की है। इस घटना में 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज आपके साथ निखिल रंजन। बिहार के पटना की में आज एक रैली हुई जहां आज 3 पुराने प्रतिद्वंदी एक साथ दिखे और फिर वहां क्या कुछ हुआ ये बताएंगे कुछ देर में। पहले चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में ये साफ कर दिया है कि जमीन अधिग्रहण सुधार बिल को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। इस बिल को लेकर विपक्षी दलों के साथ ही किसानों और तमाम दूसरे लोगों ने भारी विरोध जताया था। सरकार ने इस मुद्दे पर 3 बार अध्यादेश संसद में पेश किया और अब इसे छोड़ देने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने रेडियो पर मन की बात में कहा
कि जिस लैंड एक्विजिशन एक्ट के संबंध में विवाद चल रहा है उसके विषय में सरकार का मन खुला है। किसानों के हित के किसी भी सुझाव को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, ये बार बार मैं कहता रहा हूं।
इस अध्यादेश से जुड़े 13 बिंदुओं को आज से लागू कर दिया गया है और अब ये मुद्दा बाद में निपटाया जाएगा। और अब बात बिहार की। बिहार में कभी कांग्रेस पार्टी को लालू यादव ने चुनौती दी और 15 साल तक राज किया। फिर उन्हें चुनौती मिली नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार बीते 10 साल से बिहार के सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन अब इन नेताओं के सामने वो चुनौती आ गई है जिसका मुकाबला करने के लिए तीनों दलों को आपसी बैर भुलाकर एक साथ आना पड़ा है। इतना ही नहीं, ये नेता कुछ और पार्टियों को भी साथ लाने की कोशिश में है। पटना के गांधी मैदान में मंच पर जब लालू यादव, नीतीश कुमार और सोनिया गांधी एक साथ खड़े हुए तो क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव पुराने प्रतिद्वंद्वियों के साथ आने का मौका लेकर आया है। चुनाव से बहुत पहले ही माहौल सियासी हो चुका है और आए दिन रणभेरी फूंकी जा रही है। रविवार का दिन योजनाओं से ज्यादा आलोचनाओं में बीता। शुरुआत सोनिया गांधी ने की और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को जो कुछ दिया वो दान नहीं बल्कि उसका हक था।
कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के शासनकाल में कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी, जिसके आधार पर बिहार ने खूब तरक्की की। इसमें लालू प्रसाद यादव जी का भी सराहनीय योगदान है, लेकिन बिहार को और अधिक आर्थिक सहयोग की जरूरत है, जो उसे मिलना ही चाहिए। यह उसका हक है, आपका हक है, किसी के दयाल नहीं। मोदी सरकार अपना एक चौथाई समय खत्म कर चुकी है, लेकिन अभी तक शोबाजी के अलावा क्या किया है।
इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री के विकास कार्यक्रमों की उन्होंने जमकर धज्जियां उड़ाई।
जनधन खाता 17.5 करोड़ से भी ज्यादा खाता खुल गया, खूब ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और मालूम है आधे से ज्यादा खाते निष्क्रिय हैं। अरे भाई, जनधन खाता खुलवा दिए थे, कहा था कि हर गरीब को 15 से 20 लाख मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे। माना सब पैसा वापस लाने में समय लगता, 15-20 हजार रुपया ही सब खाता में डलवा करके बोहनी तो कर देते। अब कौन यकीन करे आपके वादों पर। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, वह तो जुमला था। तो बिहार को 1.25 करोड़ का पैकेज, मैंने इसका खुलासा कर दिया, 1.25 करोड़ में से 1.8 करोड़ पुराना है।
बिहार के स्वाभिमान के नाम पर बुलाई गई महागठबंधन की पहली रैली में इसके बाद बारी आई लालू प्रसाद की, और वो भी पूरी तैयारी के साथ आए थे।
हाँ, हमारे समधी शिवपाल यादव जी, नंदा जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी सुन रहे होंगे, उनका नाम लिए मैं चुप नहीं रह सकता। और बेगम लालू यादव जी, राबड़ी देवी।
इसके बाद उन्होंने एक एक कर अपने उलाहने शुरू किए और बताया कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से बिहार को कितना नीचा देखना पड़ा है। लालू यादव ने सांप्रदायिकता के साथ ही डीएनए, जंगल राज और उन तमाम मुद्दों को छुआ जो हाल के महीनों में बार बार उठते रहे हैं।
तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है, नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। आओ फरियालो, गाली देते हो, दोष है। इसमें 90% से दाए बात सुनो भाई, लोग आए हैं चारों तरफ से, लोग आए हैं कि बोलता है कि जंगल राज, दो पिछड़ा का बेटा जब एक हो गया, दोनों बिखरे हुए थे, तब बोलता है कि जंगल राज हो गया, तब तुम बोलते हो जंगल राज।
लालू प्रसाद ने अपने पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की भी भरपूर कोशिश की। भाजपा की दो बड़ी रैली के बाद हुई महागठबंधन की रैली का पूरा ध्यान विरोधियों को जवाब देने पर था, और इन सब के बीच आने वाले दिनों में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इसकी चर्चा कहीं पीछे छूट गई। समीर आत्मज मिश्र, BBC दिल्ली।
गुजरात के उभरते हुए युवा नेता हार्दिक पटेल के नेतृत्व में उठे पटेल समुदाय के आरक्षण से जुड़े आंदोलन के पीछे किसका हाथ है, आंदोलन क्यों और कैसे शुरू हुआ? गुजरात धार्मिक हिंसा के लिए जाना जाता है, जाति अशांति के लिए नहीं। हमारे साथी जुबैर अहमद अभी अभी अहमदाबाद से लौटे हैं और वो कहते हैं कि सवाल अनेक हैं तो जवाब भी अनेक। आइए सुने उनकी ये रिपोर्ट।
हार्दिक पटेल का ये तर्क कि पटेलों को आरक्षण दो या अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी का आरक्षण वापस लो, इस बात को हवा देता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरक्षण से संबंधित विचार से ये मेल खाता है। मोदी और संघ परिवार जाति के बजाय आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का मानदंड बनाने के पक्ष में हैं। लेखक और पत्रकार विष्णु पांड्या कहते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि इस पर काम पहले से ही हो रहा था।
ऐसी स्ट्रेटजी है कि फिर उसके साथ और भी समाज जुड़ जाएंगे। ब्राह्मण समाज है, सोनी समाज है, क्षत्रिय समाज है, रघुवंशी समाज है।
मानवाधिकार कार्यकर्ता मनीष जानी के विचार में पटेलों के आंदोलन के पीछे जरूरी नहीं कि किसी का हाथ हो। वो कहते हैं,
ऐसा है कि हमारे देश में कोई कम्युनिटी का करना, कास्ट लेवल पर करना और धर्म के नाम पर करना रियली बहुत बड़ी बात नहीं है। आप रियल इश्यूज पे बात करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकती है। तो एक सवाल ये कि सिर्फ ये एक लड़का नहीं है, जितने भी पटेल ऑर्गेनाइजेशन है, पटेल जो जिस तरह से सबसे ज़्यादा लोग हुए तो और नॉर्थ गुजरात से आए, सौराष्ट्र से आए और साउथ गुजरात से।
आंदोलन अचानक और किस कारण शुरू हुआ? इस आंदोलन के पीछे आर्थिक कारण से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि मनीष जानी कहते हैं।
उत्तर गुजरात में मोबिलाइज यूथ हुआ, उसकी सवाल है कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में लिए सवाल है, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, कल्चरल क्राइसिस भी है और खेती जमीन नहीं रही, ये एक चीज़ है। सौराष्ट्र के जो पटेल जो है वो लैंड रिफॉर्म के बाद में वो समृद्ध हुए और स्वामीनारायण जो धर्म का था उनका एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, तो शराब छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, तो उनका एक सामाजिक स्टेटस हिंदू में अपर कास्ट बन गए। ट्रेडिशनली तो ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसमें शूद्र माने जाते थे, लेकिन वहाँ पर लैंड रिफॉर्म की वजह से सौराष्ट्र में उनको काफ़ी ज़मीन मिली और जो सरप्लस है वो और बाहर भी गए, अंग्रेजों ने भी उनको भाई जब बटाया, इसलिए उसको पाटीदार बोलते हैं कि पट्टे दिए, जमीन के पट्टे दिए। और सौराष्ट्र के जो है उनमें भी 3-4 साल से बहुत काफ़ी फसल अच्छी नहीं हुई है। तीसरी साउथ गुजरात में जो सूरत में सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी मंदी चल रही है बहुत सालों से।
विष्णु पांड्या की राज्य में जाति की राजनीति पर गहरी नज़र है। उनका कहना है कि आंदोलन अचानक नहीं शुरू हुआ।
हार्दिक अचानक नेता नहीं हुआ। मई में उसने एक 16 छोटा सा गाँव है वहाँ एक बड़ा सम्मेलन बुलाया था। उससे पहले वो उसने विरमगाम में 20,000 लोगों का को इकट्ठा किया था और उन्होंने कहा कि हमें भी आरक्षण चाहिए, ये सब लोग ले जाते हैं तो और क्या, हमारे पास रास्ता नहीं है।
गुजरात की मौजूदा पहचान हिंदू मुस्लिम दंगों से है। पिछले 15-20 सालों में गुजरात से बाहर राज्य सांप्रदायिक दंगों के लिए अधिक जाना जाता रहा है, जातीय शांति के लिए नहीं। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो गुजरात में जाति के आधार पर आंदोलन पहले कई बार हो चुके हैं। विष्णु पांड्या कहते हैं कि 1981 और 1985 में पटेल समुदाय ने बड़े आंदोलन किए थे जिनमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। मनीष जानी कहते हैं कि गुजरात में जाति प्रथा पहले से मौजूद है। हार्दिक पटेल कास्ट के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं, जाति के आधार पर यह पहला आंदोलन नहीं है और विशेषज्ञों का कहना है कि शायद आखिरी भी ना हो। जुबैर अहमद, BBC अहमदाबाद।
जंग शुरू हो चुकी है, दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है।
उनको कोई भी पाकिस्तान सोल्जर की बॉडी मिले बैटलफील्ड में तो उन्होंने उसी टाइम में फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनको दफनाया।
जब उसमें आग लग गई तो वो कम से कम ये समझ लीजिए कि आधा घंटे से ज्यादा बल्कि 40 मिनट तक ये बम फटते रहे।
साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर जिए उस युद्ध की धुंधली यादों को एक बार फिर से रेहान फजल के साथ 1 सितंबर से शाम में दिन भर और सुबह विश्व भारती में।
BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर निखिल रंजन के साथ और अब हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फैलाओ जियारा, प्रोफेसर सुनील खिलनानी की श्रृंखला इनकार्नेशंस की 8वीं कड़ी। आदि शंकराचार्य, जानिए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म हिंदू धर्म के प्रणेता आदि शंकराचार्य के बारे में, जिन्होंने हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या की। आप तक पहुंचा रहे हैं मोहनलाल शर्मा।
दक्षिण भारत की इस मंदिर नगरी में पौ फटने वाली है। धुंधले प्रकाश में मैं आधा जागा आधा सोया चला जा रहा हूं कि अचानक चौंक पड़ता हूं। बरामदे में एक सांप कुंडली मारे अलसाया सा पड़ा है। ये खुद चला जाए इसी का इंतजार करना बेहतर होगा। धीरे धीरे भोर का उजाला फैलने लगा है और मैं फिर सांप को देखता हूं। अरे ये सांप कहां? ये तो एक रस्सी है जो छत ठीक करने वालों ने यहां छोड़ दी होगी। रस्सी को धोखे से सांप समझ लेने की ये भूल भारतीयों के जीवन में कभी कभार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये भारतीय दर्शन का एक जाना पहचाना दृष्टांत है। कई बार हम जो देखते हैं वो नहीं होता जो हम समझते हैं। दूसरे शब्दों में, रस्सी को सांप समझते हुए हमें जिस वास्तविकता का एहसास होता है, उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक हम उस पर विश्वास करते हैं। हिंदू दर्शन में छलावा और रहस्यात्मकता के रूपकों की भरमार है। ये सभी माया के उदाहरण हैं। माया यानी ऐसा यथार्थ जिसका अस्तित्व तो है लेकिन अपनी चेतना की सीमाओं के कारण हम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। अगर हम इस चंचल और भ्रामक यथार्थ को भेद सकें तभी हमें पवित्र और चिरंतन ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। आज कई लोगों की दृष्टि में ब्रह्म को रहस्य बनाए रखने वाली माया की अवधारणा ही हिंदू दर्शन का मूल तत्व है। हिंदुत्व की इस परिभाषा और विश्लेषण का श्रेय है 8वीं सदी के एक दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु आदि शंकराचार्य को।
न मैं भूमि हूं न जल, न अग्नि न वायु, न इंद्रियां और न इन सब का समूह, क्योंकि इन सभी की प्रकृति अस्थिर और परिवर्तनशील है।
शंकराचार्य ने अपना पहला हिंदू मठ दक्षिण पश्चिम भारत में श्रृंगेरी में स्थापित किया था, जो आज कर्नाटक की एक तीर्थ नगरी है।
To get to Sringeri, you have to take narrow hill roads that wind up through the hills of northern Karnataka.
Sringeri जाने के लिए आपको उत्तरी कर्नाटक की पहाड़ियों के बीच से घुमावदार संकरी सड़कों पर मीलों लंबे कॉफी बागानों, ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्षों और बांसों के झुरमुट से होकर गुजरना होगा। श्रृंगेरी घास के मैदानों के बीच एक छोटा सा पहाड़ी शहर है। मठ और मंदिर के बीच एक नदी बहती है। शंकराचार्य यानी शंकर ने उस समय प्रचलित हिंदू विश्वासों और प्रथाओं में आमूल चूल बदलाव किया। संपूर्ण उपमहाद्वीप में मंदिरों और विद्यालयों की स्थापना की और कई मायनों में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म हिंदू धर्म को वो रूप दिया जैसा वो आज है। हालांकि तिथियों को लेकर कुछ मतभेद हैं, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि शंकर का जन्म दक्षिणी भारत के मालाबार क्षेत्र यानी आज के केरल राज्य में 8वीं सदी में हुआ था। प्राचीन भारत की अन्य विभूतियों की तरह शंकराचार्य के आरंभिक जीवन के बारे में भी कई अनिश्चितता और मतभेद हैं। सैकड़ों वर्ष बाद काव्यात्मक शैली में लिखी गई कुछ जीवनियों के अनुसार शंकर के निसंतान माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए नजदीकी मंदिर में शिव की आराधना की। आराधना से प्रसन्न भगवान शिव उनके स्वप्न में प्रकट हुए और वरदान के रूप में उन्हें या तो अत्यधिक प्रतिभाशाली दार्शनिक सर्वज्ञ और गुणवान लेकिन अल्पायु या फिर दीर्घायु किंतु किसी विशेष गुण या प्रतिभा से हीन पुत्र का विकल्प दिया। निसंतान दंपत्ति ने प्रतिभाशाली पुत्र का वरदान मांगा और अपने पुत्र का नाम शंकर रख दिया। वरदान के अनुरूप ही शंकर बचपन से प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों का अध्ययन कर लिया और 16 वर्ष की आयु में उन पर भाष्य भी लिख डाले। लेकिन ये प्रतिभा उनकी माँ के लिए दोधारी तलवार साबित हुई। पिता की तो उनके बचपन में ही मृत्यु हो गई और शंकर से अपेक्षा थी कि वो आदर्श पुत्र की तरह अपनी माँ का भरण पोषण करें, लेकिन शंकर ने 5 वर्ष और कुछ लोगों के अनुसार 8 वर्ष की उम्र में ही सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट कर दी। शंकराचार्य का असमय संन्यास एक अपवाद था। एक हिंदू को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सबसे आखिर में संन्यास आश्रम का वरण करना होता है। लेकिन बाल शंकर अपनी विधवा माँ से संन्यास लेने की अनुमति मांगते रहे और वृद्ध माँ को अपने दिल पर पत्थर रखकर अनुमति देनी पड़ी। शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। शंकराचार्य एक महान उद्देश्य से संपूर्ण भारत में विचरण करते रहे। कई धार्मिक गुरुओं से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की चार दिशाओं में चार धामों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में श्रृंगेरी।
His teachings gained many devoted followers.
शंकराचार्य की शिक्षाओं से प्रभावित होकर कई लोग उनके अनुयायी बन गए और आज भी उनके अनुयायियों की संख्या काफी अधिक है। असल में ये शंकराचार्य के अनुयायी ही हैं जो यहाँ श्रृंगेरी मठ और मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए हैं। हिंदू धर्म से जुड़े प्रारंभिक विचार हमें वेदों में मिलते हैं। आज से 2500 साल पहले रचे गए उपनिषदों में इन विचारों का विकास हुआ। ये संस्कृत रचनाएं वेदांत यानी वेदों के अंत के नाम से प्रसिद्ध हुई और इनमें वेदों में उठाए गए कुछ सार्वकालिक प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की गई, जैसे हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ क्यों हैं, मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाते हैं। उपनिषदों में पुनर्जन्म और इस जीवन के कार्यों के आधार पर अगले जन्म का निर्धारण जैसे सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। शंकराचार्य ने इन ग्रंथों का गहन अध्ययन मनन किया और उन्हें एक दर्शन पद्धति के रूप में विकसित किया। जॉर्डन गेनरी न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं।
शंकर's ambition was to provide a unified single reading of the
great... एक चिंतक के रूप में शंकर चाहते थे कि हिंदू धर्म ग्रंथों की बहुलता और विविधता को एकीकृत, सुसंबद्ध और एक समान रूप दिया जाए। इसलिए उन्होंने लगभग सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों पर भाष्य लिखे और उनकी एक समान व्याख्या करने का प्रयास किया। उनके लिए ये अद्वैत का रूप था, यानी वे मानते थे कि वास्तविक तत्व एक ही है जिसका नाम ब्रह्म है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मूलभूत आधार है, और ब्रह्म के अतिरिक्त सभी कुछ व्यक्तियों के बीच दिखाई देने वाली भिन्नताओं समेत विश्व के सभी भेद और अंतर महज ब्रह्म है यानी माया है।
शंकर का अद्वैत एकेश्वरवाद से अलग था। शंकर का ब्रह्म गुणों से परे था, ऐसा ईश्वर या सर्वव्यापी दैवीय तत्व जो निर्गुण था। शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ तक पहुंचने के लिए पुल पार कर चढ़ाई चढ़नी होगी। 8वीं सदी में अपनी स्थापना के बाद से इसका स्वरूप थोड़ा बहुत बदल गया है और लगता है आज के सन्यासियों के आचार व्यवहार में भी अंतर आ गया है, और शायद वो शंकराचार्य के मूल विचारों से कुछ भटक गए हैं। शंकर का विश्वास था कि वैदिक ऋचाओं के महज कर्मकांडों के आदेशों से कहीं अधिक मूल्यवान तत्व मौजूद हैं, जैसे अपने कर्मों को सुधारने और इस प्रकार जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए मंत्र पाठ नाकाफी है। शंकर का मानना था कि ये आत्मा की मुक्ति का सही मार्ग नहीं है। उनका मानना था कि वेदों में, विशेषकर बाद में रचे गए उपनिषदों में ऐसा ज्ञान समाहित है जो मानव और ब्रह्मांड की अनिवार्य एकता पर प्रकाश डालता है, इसलिए वैदिक धर्म को नया रूप दिया जाना चाहिए। कर्मकांडों की अधिकता के स्थान पर वैराग्य, ब्रह्मचर्य और बौद्धिक तप को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने मंत्रों के स्थान पर ध्यान और चिंतन का सुझाव दिया। ध्यान से प्रत्येक व्यक्ति माया के आवरण को भेद सकता है और अपनी आत्मा व ब्रह्म के तादात्म्य को पहचान सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। शंकर के सिद्धांतों को अद्वैत वेदांत कहा जाता है। ब्रह्मांड की एकता को अभिव्यक्त करने के उनके प्रयासों ने कई सुंदर, उन्हीं की तरह रहस्यमय पहेली जैसी पंक्तियों को जन्म दिया।
न मैं ऊपर हूं न नीचे, न अंदर हूं न बाहर, न मध्य में न उस पार, न पूर्व में हूं न पश्चिम में, मैं तो अखंड एक रूप सर्वव्यापी हूं अंतरिक्ष की भांति।
स्थापकाय च धर्मस्य। शंकर अपने दुरुह उपदेशों को लोकप्रिय बनाने में भी माहिर थे। उन्होंने कई भक्तिगीत और भजन लिखे जो आज भी गाए जाते हैं। कर्नाटक शैली की प्रसिद्ध गायिका एमएस शुभलक्ष्मी की आवाज में शंकर भक्ति में गाया गया ये भजन भज गोविंदम शंकराचार्य की ही रचना है।
भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज।
शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के जिस रूप का प्रचार किया वो बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसके कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें सभी हिंदू नहीं मानते। शिकागो विश्वविद्यालय में धर्मों के इतिहास की प्रोफेसर वेंडी डोनिगर।
Shankara is there. Everybody knows about him. Some people use him as their own guide to their own thinking about the meaning of life.
शंकराचार्य के बारे में सभी जानते हैं। कुछ लोगों के लिए वे ऐसे गुरु हैं जो जीवन के अर्थ को समझने में उनका मार्गदर्शन करते हैं। और ऐसे लोगों का मानना है कि जीवन के अर्थ को समझना, उस पर विचार करना ही वास्तविक हिंदुत्व है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। यह दार्शनिक पक्ष हिंदू धर्म का एक अंश है। अंग्रेज जब भारत आए और उन्होंने ब्रिटिश राज की स्थापना की तो वे शंकर की परंपरा वाली यानी हिंदू धर्म की दार्शनिक शाखा की ओर आकर्षित हुए। उन्हें अच्छा लगा कि यहाँ ऐसी दार्शनिक परंपरा है जिसे वे तालमेल बिठा सकते हैं।
19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी में हिंदू पुनरुत्थानवादियों और राष्ट्रवादियों ने ईसाइयत और इस्लाम के एकेश्वरवादी धर्मों की सशक्त प्रतिक्रिया के रूप में शंकर के अद्वैत को अपनाया। विवेकानंद जैसे धर्म प्रचारकों ने शंकर के विचारों को फिर से प्रचारित और प्रसारित किया और अद्वैत वेदांत को प्रोत्साहन देने व राष्ट्रीय आत्मगौरव की भावना को जगाने के लिए विद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। हिंदू धर्म आज भी वैसा ही है जैसा शंकर के जीवन काल में था, अलग अलग रूपों में बटा हुआ, आंतरिक तर्क वितर्क से भरपूर और आस्थाओं के अलग अलग रूपों को स्वीकारता हुआ। हिंदू धर्म का न तो कोई एक निर्धारक ग्रंथ है न ही कोई एक व्याख्या। इसमें है जीवन और अस्तित्व के संबंध में सम्मोहक प्रश्न और पहेलियां, माया व ब्रह्म को लेकर चिंतन मनन, तर्क वितर्क। यहाँ श्रृंगेरी में फिर से बारिश होने लगी है और बारिश से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे हैं।
फैला उजियारा का ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। और एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो दिन में झपकी लेते हैं। एक रिसर्च के अनुसार दिन में सोने से न केवल आप बेहतर महसूस करते हैं बल्कि रक्तचाप और भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक से भी आप सुरक्षित हो जाते हैं। ये रिसर्च जिन 400 पुरुषों और महिलाओं पर किया गया उनकी औसत आयु 61 साल थी। इस शोध को लंदन में हर साल होने वाले यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। एथेंस के आस्केलेपियन वाला जनरल हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने उन लोगों को शोध में शामिल किया जिन्हें उच्च रक्तचाप की शिकायत थी। इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आइए bbchindi.com पर। और कार्यक्रम में अब सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। बिहार में चुनावों से पहले आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की रैली में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया है कि जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर नया अध्यादेश नहीं आएगा। मोदी ने कहा कि हालांकि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन बिल से जुड़े 13 बिंदुओं को आज से लागू कर दिया गया है। जमीन अधिग्रहण अध्यादेश सोमवार यानी 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। जापान में शांतिवादी संविधान में बदलाव के सरकार के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए संसद के बाहर हजारों लोग जमा हुए हैं। संविधान में बदलाव से सेना को युद्ध के लिए ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। सऊदी अरब के सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि एक तेल कंपनी के कर्मचारियों के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना सऊदी अरब के पूर्वी शहर खोबार की है। इस घटना में 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं जिनमें कई अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिनभर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। तकनीकी रूप से आज कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे थे राजेश चौहान। पूरी टीम के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।